रुद्रा को किसी भी काम के लिए मनाना आसान नहीं था। रुद्रा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल से प्लेट में रखा खाना उठाया और किचन में गया। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आया और रूम में चला गया। उसने रूही को जमीन पर बैठी देखा। तभी रूही के सामने रुद्रा का हाथ आया, जिस पर एक बाइट लिया हुआ था। रूही ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। रुद्रा ने उसकी ये हरकत देखते हुए कहा, मुझसे गुस्सा होना तो खाने पर क्यों निकालती हो? खाना खा लो, तुमने वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया ना। रूही एकटक उसे देख रही थी। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, रुद्रा ने उसके मुंह में खाने का निवाला डाल दिया। जैसे ही रूही ने उसे खाया, उसकी आंखों से झरझर आंसू आने लगे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने उसकी आवाज उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। रुद्रा के उसके मुंह में एक और बाइट डालते हुए कहा, चुपचाप खाओ, समझी? तुम्हें पूरा खाना है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रुद्रांश ओब्रॉय को मना कर सके। इतना बोलकर वो रूही को जबरदस्ती मुंह में खाना ठूंस रहा था। रूही की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अपना गला दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने टेबल से पानी उठाने की कोशिश की, रुद्रा ने उसे ले लिया। रूही, प्लीज पानी दे दो। रुद्रा ने पानी का जग लिया और जाते हुए कहा, बाय वाइफी। इतना बोलकर रुद्रा वहां से नीचे चला गया। रूही खड़ी हुई और जैसे ही वॉशरूम की ओर जाने को हुई, वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। रुद्रा नीचे आराम से बैठा अपना काम कर रहा था, तभी उसे किसी का फोन आया। उसने फोन कान से लगाया और कहा, बोलो। उस ओर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रुद्रा ने कहा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक सब कुछ तुम संभाल लो। और इतना बोलकर रुद्रांश ने फोन रखा और उठकर रूम में आ गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, तो एक बार को वो खुद भी चौंक गया, रूही को इस तरह बेहोश देखकर। उसने रूही को तुरंत नीचे झुककर गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसने उसे ब्लैंकेट से कवर करके डॉक्टर को फोन करने लगा। रुद्रा ने रूही के माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसे फीवर भी था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे और रुद्रा पास में खड़ा सब बड़े ध्यान से देख रहा था। रुद्रा ने डॉक्टर को देखा और कहा, डॉक्टर, ये ठीक है ना? डॉक्टर ने रुद्रांश को देखा और कहा, हाँ सर, ये ठीक है, बस हल्का सा फीवर है और इन्हें इन्फेक्शन है शायद किसी चीज से। अगर और ज्यादा देर होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। अभी मैं कुछ दवाई दे देता हूँ। शट अप, सॉरी सर, आप ये दवाई मैडम को दे दीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। रुद्रा ने एक नज़र रूही को देखा और बाहर आ गया। रुद्रा नीचे आकर बोला, काकी, इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। काकी, जी बेटा। इतना बोलकर काकी रूही के पास रूम में आ गई। काकी रूही के माथे पर हाथ रखकर देख रही थी। उसे अभी भी हल्का हल्का फीवर था। रुद्रा अपनी कार लेकर कहीं निकल गया था। उसने कार की स्पीड काफी तेज की हुई थी। थोड़ी देर में उसने अपनी कार एक सुनसान जगह आकर रोकी। वहां आसपास कुछ नहीं था, पर रुद्रा कार से बाहर आया और थोड़ी दूर पैदल चलने लगा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद रुद्रा के सामने एक बिल्डिंग थी। रुद्रा उसमें चला गया। उस बिल्डिंग में साहिल पहले से ही बैठा हुआ था। साहिल रुद्रा को देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। रुद्रा साहिल की जगह उस चेयर पर बैठ गया। उसके सामने एक आदमी था जिसके हाथ पैर और मुंह तीनों बंधे हुए थे। कुछ बोला इसने? नहीं, कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आखिर है तो उस वाडिया का आदमी, कैसे फर्क पड़ेगा? उसकी बर्बादी हम तय करेंगे। चल बता, वो वाडिया भी कहाँ है? उसकी प्यारी बेटी मेरे पास है। वो आदमी, मुझे नहीं पता और तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। रुद्रा बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के माथे पर गोली चला देता है और उठकर वहां से जाते हुए साहिल से कहता है, साहिल, उस आदमी को देख लेता हूँ भाई, मैं लगा दूंगा ठिकाने। रुद्रा वहां से वापस घर के लिए निकल गया था। अब घर पर रूही को भी होश आ गया था। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। उसे अभी भी अजीब लग रहा था। रूही, मन में सोचते हुए, तुम ऐसे भी होगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या सोचते हो तुम? मुझे तुमसे प्यार अब नहीं है, लेकिन सब नफरत में बदल गया है। तुमने सब बदल दिया। कुछ ही दिनों में कैसी हो गई मेरी जिंदगी? कितने खुश थे ना हम सब। पास्ट में एक छोटा सा घर, जिसके हॉल में सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उनकी उम्र लगभग 50-55 होगी। उनकी गोद में सोई हुई एक लड़की थी जो उनसे बड़े आराम से बोल रही थी। लड़की, उफ़ो पापा, आप इन बड़े लोगों के घर क्यों काम करते हो? मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आदमी, करना पड़ता है बेटा, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे नहीं पसंद वो आपका बॉस। एक औरत आते हुए, हाँ हाँ, तेरा बस ना चले, वरना तू तेरे पापा को काम ही ना करने दे। हाँ माँ, मेरा बस चले तो मैं पापा को वहाँ काम ना करने दूँ। औरत, तुझे क्या पता घर में कितना खर्चा होता है? तेरी पढ़ाई, अनु की पढ़ाई, घर का खर्चा। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई ना, अब देखना मैं जॉब करूंगी, फिर सब सही होगा। रूही अपने इस पास्ट से बाहर तब आई जब उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने रुद्रा था। रुद्रा को देखकर रूही की नफरत और बढ़ गई। उसने एक भी बार उसे नहीं देखा और बेड से उतरकर बाहर बालकनी में आ गई। रूही बालकनी में खड़ी आराम से ताजी हवा ले रही थी कि तभी उसे उसकी कमर पर रुद्रा के हाथ महसूस हुए। इस बार वो बिल्कुल नहीं हिली थी, न ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। रूही अभी भी चुपचाप खड़ी हुई थी और रुद्रा को ये बात और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। रुद्रा ने उसकी कमर पर हाथ लपेटे और उसे अपनी ओर घुमाने लगा। रूही उसकी ओर घूमकर उसी की आंखों में देख रही थी। रुद्रा ने रूही को शांत देखकर कहा, आज तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा भाई? रूही ने रुद्रांश को देखकर कहा, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते और करोगे भी क्या? ये किस या मुझे जबरदस्ती मिर्च खाना खिला सकते हो? उफ, मिस इशिका वाडिया, तुम भूल रही हो, अभी तुम्हारा सरनेम पता किया है तो तुमसे शादी कर ली। तो सोचो जिस दिन खुद तुम्हारे बाप अपना जुर्म कबूल करेगा उस दिन तुम्हारा क्या होगा तुम्हें नहीं पता। मेरा नाम इशिका नहीं है और मेरे पापा के बारे में बोलना बंद करो, समझे? वो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बराबरी तुम ही नहीं इस मुंबई में कोई नहीं कर सकता। रुद्रा को रूही का उसके पापा को अच्छा बताना बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसने रूही को खुद से धक्के से दूर किया और उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। रुद्रा ने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और कहा, तुम्हारे बाप ने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली और तुम बोल रही हो तुम्हारा बाप अच्छा इंसान है, आज उस इंसान की वजह से मैं यहाँ हूँ। रूही अपने गाल पर हाथ रखे सिर्फ रुद्रा को देख रही थी, आज उसकी आंखों में गुस्सा था। रुद्रा को अचानक से एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा था, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। रूही ने रुद्रांश को देखकर कहा, मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या बाप की गलतियों की सजा बच्चों को देना सही होगा? जिस बात की हमें इतनी सी भी खबर नहीं है उसकी सजा हम क्यों भुगतें, बताओ रुद्र? रुद्रा ने उसके बाल छोड़े और उसकी बाजू पकड़कर कहा, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और तुम उसका खून। रूही की आंखों में वापस आंसू आ गए थे। रुद्रा ने उसका बाजू कसकर पकड़ा हुआ था। रूही, मन में सोचते हुए, काश तुम्हें सच बता पाते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते।